नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादु याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में देश में बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक केरल, कर्नाटक और गोवा में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल से हो रहा है शुरू। सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सांसदों को दिलाई जाएगी शपथ। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 में कथित अनियमितताओं का मामला व्यापक जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात विचारक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि दी। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में देश में बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों ने भाग लिया। हाल में झारखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम सहित कई राज्यों में भूस्खलन और बाढ़ से जुड़ी कई घटनाएं हुई। इस समय असम में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और कई जिलों में लाखों लोगों पर इसका असर पड़ा है। पिछले महीने चक्रवात रेमल से भी त्रिपुरा में काफी नुकसान हुआ। मौसम विभाग ने इस वर्ष सामान्य से अधिक मानसून का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने केरल, कर्नाटक और गोवा में अगले चार दिनों तक अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात के कई हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है और साथ ही गरज के साथ आंधी आने और बिजली चमकने की भी संभावना है। विभाग ने कहा कि अगले तीन दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियों अनुकूल है। पूर्वोत्तर भारत और उपहिमालय पश्चिम बंगाल में अगले पांच दिनों तक तेज से बहुत तेज वर्षा जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले दो दिन से तीन दिनों के दौरान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आंधी चलने और बिजली गिरने की आशंका है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आर के जैनामनी ने देश में मौसम की स्थिति पर जानकारी दी है। डॉक्टर जैनामनी ने बताया कि दिल्ली में कई दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने के बाद तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया है। इस बीच पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कई हिस्सों में अगले दो दिनों तक भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहने का अनुमान है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। वरिष्ठ भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब लोकसभा के नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। श्री महताब को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है। नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव इस महीने की 26 तारीख को होगा। अगले दिन 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। संसद सत्र अगले महीने की 3 तारीख तक चलेगा। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 में कथित अनियमितताओं का मामला व्यापक जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि सरकार परीक्षाओं की सुचिता और विद्यार्थियों का हित सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि कोई व्यक्ति या संगठन इस मामले में लिप्त पाया जाता है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने परीक्षाओं में कदाचार रोकने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 लागू किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने पिछले महीने की 5 तारीख को नीट यूजी परीक्षा संचालित की थी। परिणाम आने के बाद परीक्षा में अनियमितता बरते जाने और जालसाजी के आरोप लगे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात विचारक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने अपना जीवन भारत माता की सेवा में समर्पित कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का ऊर्जावान व्यक्तित्व देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर उन्होंने नई दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में पौधों का वितरण किया। श्री नड्डा ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। वे जीवनभर देशभक्त और शिक्षाविद रहे तथा उन्होंने सामाजिक न्याय में प्रति सदैव संघर्ष किया। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारतीय ज्ञान के प्रति देश के युवाओं के बीच बढ़ती रूचि से वे उत्साहित हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि समय से कर अंतरण, वित्त आयोग अनुदान और जीएसटी क्षतिपूर्ति बकाया की केंद्रीय सहायता का उद्देश्य राज्यों के विकास की गति देना है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श में श्रीमती सीतारमन ने राज्यों से केंद्र की विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अधिकांश ऋण समायोजी है। कुछ ऋणों के लिए जन केंद्रित सुधार और क्षेत्र विशेष पूंजीगत परियोजनाएं लागू करने की शर्त है। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, गोवा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के मुख्यमंत्री, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री के साथ अन्य राज्यों के वित्त मंत्री उपस्थित थे। मणिपुर के जिरीबाम जिले में बोरो बेकरा उपमंडल के अंतर्गत गोवाखल स्थित जैविक फार्म हाउस में आज एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। पुलिस ने बताया कि यह घटना आज तड़के करीब 3 बजे हुई और विस्फोट से फार्म हाउस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, क्योंकि इस वर्ष मई के पहले सप्ताह में जिरीबाम जिले में जातीय हिंसा भड़कने के बाद फार्म हाउस में कोई नहीं रह रहा था। पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया है और अपराधियों को पकड़ने की जांच शुरू कर दी है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने सभी से एकता और शांति को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाने का आह्वान किया। डॉ मांडविया ने खेल के क्षेत्र में अपने जोश, प्रतिबद्धता और उपलब्धता के लिए सभी एथलीटों की सराहना की। खेल मंत्री ने इस वर्ष के पेरिस ओलंपिक की तैयारी में लगे सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का विषय है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ओलंपिक दिवस की स्थापना 1948 में हुई थी तथा विश्व स्तर पर खेल और शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने एयर इंडिया विमान 182 दुर्घटना में मारे गए 329 लोगों को श्रद्धांजलि दी है। यह दुर्घटना आज ही के दिन 39 वर्ष पूर्व 1985 में हुई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में इसे आतंकवाद के इतिहास में सबसे दुखद घटना बताया। विदेश मंत्री ने कहा कि उनकी भावनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि यह घटना हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद को कभी भी सहन नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज एक बार फिर कामयाबी की कहानी लिखी। इसरो ने लगातार तीसरी बार रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक की लैंडिंग एक्सपेरिमेंट में सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के चित्रदुर्ग में रविवार सुबह 7:10 में लैंडिंग एक्सपेरिमेंट के तीसरे और फाइनल टेस्ट को अंजाम दिया गया। चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में पुष्पक को इंडियन एयरफोर्स के चिनुक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले गया और रनवे पर ऑटोनोमस लैंडिंग के लिए छोड़ा गया। पुष्पक ने क्रॉस रेंज करेक्शन मैन्यूवर को एग्जीक्यूट करते हुए हॉरिजॉन्टल लैंडिंग को सटीकता से अंजाम दिया। उल्लेखनीय है कि पहला लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 2 अप्रैल 2023 और दूसरा 22 मार्च 2024 को किया गया था। आईसीसी 2020 विश्व कप क्रिकेट में आज सुबह जमैका के किंगस्टोन में सुपर 8 मुकाबले में अफगानिस्तान ने एक रोमांचक मैच में ऑस्ट्रेलिया को 21 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 20 ओवरों में 5 विकेट पर 148 रन बनाए। 149 रनों के लक्ष्य के जवाब में ऑस्ट्रेलिया 19 ओवर और 2 गेंद में 127 ही बना सकी। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर गुलाबदीन नायब ने 4 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज अमेरिका का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से बारबाडोस के ब्रिजटाउन कैंसिंगटन ओवल में खेला जाएगा। भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने इस वर्ष के ओलंपिक खेलों के टेनिस मुकाबले में पुरुष सिंगल्स में अपनी जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।